एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से इंसानियत का हिस्सा रहा है, युद्ध। लेकिन इसे हम एक बिल्कुल नए चश्मे से देखेंगे।
बिल्कुल, आज बात होगी मशहूर सैन्य इतिहासकार सर ह्यू स्ट्रॉचन के विचारों की। वो हमें युद्ध की जो परंपरागत समझ है ना, उसको चुनौती देने के लिए उकसाते हैं।
हाँ, खास तौर पर वो समझ जो क्लॉज़विट्ज़ के विचारों पर टिकी है।
जी हाँ, स्ट्रॉचन ये सवाल उठाते हैं, क्या युद्ध की भूमिका और उसके लक्ष्य वही हैं जो हम हमेशा से मानते आए हैं?
और ये सवाल आज इतना जरूरी क्यों हो गया है?
देखिए, आज दुनिया में संघर्ष का तरीका बदल रहा है ना। स्ट्रॉचन का विश्लेषण हमें ये समझने में मदद करता है कि क्यों 21वीं सदी में युद्ध और शांति के बीच की लकीर इतनी धुंधली सी हो गई है।
हाँ, और ये भी कि कैसे क्लॉज़विट्ज़ की वो सबसे मशहूर कहावत कि युद्ध राजनीति का ही विस्तार है, शायद आज हमें थोड़ा गुमराह कर सकती है।
बिल्कुल, और क्यों असली लड़ाई अब शायद मैदान पर उतनी नहीं लड़ी जा रही जितनी हमारे फोन और कह सकते हैं हमारे बटुए में लड़ी जा रही है।
तो चलिए इस दिलचस्प और थोड़ी कहूँ तो मुश्किल सोच की परतों को खोलते हैं।
चर्चा शुरू करने से पहले सर ह्यू स्ट्रॉचन के बारे में थोड़ा जान लेना अच्छा रहेगा, है ना?
हाँ बिल्कुल। कौन है ये?
ये कोई मामूली इतिहासकार नहीं है। दुनिया के जो सबसे जाने माने सैन्य इतिहासकार और रणनीतिक विचारक हैं उनमें इनकी गिनती होती है।
अच्छा, मैंने सुना है ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर रहे हैं।
जी हाँ, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में युद्ध के इतिहास के बहुत ही प्रतिष्ठित चिचले प्रोफेसर रह चुके हैं और अब सेंट एंड्रूज विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं।
और इनकी पकड़ मतलब कब से कब तक के युद्धों पर है?
कमाल की रेंज है इनकी। नेपोलियन के जमाने से लेकर आज के साइबर वॉरफेयर तक सब पर इनकी गहरी समझ है।
वाह, और जो बात इन्हें खास बनाती है
वो ये है कि ये सिर्फ किताबी कीड़े नहीं है, जैसा आपने कहा, इन्होंने सरकारों और सेनाओं के सलाहकार के तौर पर भी काम किया है।
अच्छा, तो प्रैक्टिकल अनुभव भी है।
हाँ, तो ये जानते हैं कि सिद्धांत जमीन पर कैसे काम करते हैं या कई बार क्यों फेल हो जाते हैं। इन्हें पता है कि असली दुनिया में पॉलिसी कैसे बनती है।
सही कहा, मतलब इनके पास ऐतिहासिक गहराई भी है, थ्योरी की समझ भी, और आज की दुनिया की नब्ज पर भी हाथ है।
बिल्कुल, इसीलिए जब ये युद्ध जैसे भारी भरकम विषय पर बोलते हैं तो दुनिया ध्यान से सुनती है।
ये सिर्फ लड़ाइयों का ब्यौरा नहीं देते बल्कि ये बताते हैं कि वक्त के साथ युद्ध के बारे में हमारी सोच, उसकी भूमिका, उसके लक्ष्यों की समझ, ये सब कैसे बदला है। तो स्ट्रॉचन का मूल तर्क क्या है, उनकी सबसे बड़ी बात क्या है?
वो कहते हैं कि युद्ध को सिर्फ सेनाओं की भिड़ंत समझना बहुत अधूरा है।
अधूरा कैसे?
ये एक बहुत पेचीदा कई परतों वाली ताकत है जो राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति से भी जुड़ी है और उसे बदलती भी रहती है। उनका केंद्रीय विचार ये है कि युद्ध की जो पारंपरिक पश्चिमी समझ है, जो ज्यादातर क्लॉज़विट्ज़ से प्रभावित है और मानती है कि युद्ध मुख्य रूप से देशों के बीच होता है, वो आज की हकीकत समझने के लिए नाकाफी है।
तो वो क्या कह रहे, युद्ध अब कैसा हो गया?
स्ट्रॉचन कहते हैं कि युद्ध अब पहले से कई ज्यादा राजनीतिक हो गया है। इसकी भूमिका सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं रही।
मतलब
ये अर्थव्यवस्था, सूचना और सामाजिक बदलाव लाने का भी एक जरिया बन गया है।
अच्छा, तो मतलब युद्ध का दायरा बहुत बढ़ गया है। वो एक बड़ी चुनौती की बात करते हैं कि हम युद्ध की ऐसी समझ कैसे बनाएं जो 21वीं सदी में इसके बदलते रूप, इसकी बदलती भूमिका और लक्ष्यों को सही से पकड़ सके।
जी हाँ, ये सवाल वो नीति बनाने वालों, फौजी अफसरों, अकादमिक लोगों और हाँ, हम जैसे उन आम नागरिकों के सामने भी रखते हैं जो इस उलझी दुनिया को समझना चाहते हैं।
और उनका मानना है कि हमारी पुरानी सोच और आज के संघर्षों की जो सच्चाई है,
उनके बीच एक खतरनाक गैप बन गया है और यही गलतफहमी अक्सर हमारी रणनीतिक नाकामियों की और शांति स्थापित करने में हमारी मुश्किलों की जड़ है।
ऐसा लगता है जैसे हम शायद युद्ध के सही लक्ष्य को ही नहीं पहचान पा रहे हैं आजकल।
चलिए अब स्ट्रॉचन के मुख्य विचारों को थोड़ा और कुलेते हैं। वो अपनी बात क्लॉज़विट्ज़ से शुरू करते हैं ना, जिनका नाम युद्ध की किसी भी चर्चा में सबसे पहले आता है।
हाँ, वो त्रिमूर्ति वाली बात।
बिल्कुल, क्लॉज़विट्ज़ की मशहूर त्रिमूर्ति, सरकार जो तर्क या कारण देती है, सेना जो मौके और अनिश्चितता से जूझती है, और लोग जिनमें जुनून और हिंसा होती है। स्ट्रॉचन कहते हैं कि आज के हालात ने इस तिकड़ी का संतुलन बिगाड़ दिया है।
खास तौर पर क्लॉज़विट्ज़ का वो वाक्य कि युद्ध अन्य साधनों से राजनीति का ही विस्तार है, स्ट्रॉचन क्या कहते हैं?
वो आगाह करते हैं कि इसे हमने जरूरत से ज्यादा सरल बना दिया है। जैसे युद्ध कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा राजनीतिक औजार हो। क्लॉज़विट्ज़ खुद मानते थे कि युद्ध एक बार शुरू हो जाए तो उसका अपना एक हिंसक तर्क होता है, जिसे स्ट्रॉचन युद्ध का व्याकरण कहते हैं।
युद्ध का व्याकरण, दिलचस्प।
हाँ, और ये व्याकरण कई बार राजनीति के तर्क या जो घोषित लक्ष्य होता है उस पर हावी हो सकता है। युद्ध की अपनी एक अप्रत्याशित बेलगाम हो सकने वाली ताकत है, वो अपना एक अलग रोल भी विकसित कर सकता है।
तो स्ट्रॉचन कह रहे हैं कि युद्ध की पुरानी परिभाषाएं जैसे देशों के बीच संगठित हिंसा, वो आज के संघर्षों को नहीं समझा सकती, जैसे इराक, अफगानिस्तान या यूक्रेन में जो चल रहा है।
हाँ, वो यही कहते हैं कि ये परिभाषाएं इन जटिल लड़ाइयों को पकड़ने में नाकाम है। हमें नए तरीके चाहिए इन्हें समझने के लिए। युद्ध की भूमिका को नए सिरे से देखने की जरूरत है। और यहीं पर स्ट्रॉचन एक बहुत ही दिलचस्प बात लाते हैं। वो इसे युद्ध का खोया हुआ आयाम, लॉस्ट डायमेंशन कहते हैं।
खोया हुआ आयाम, वो क्या है?
वो कहते हैं कि सिर्फ जनरलों, लड़ाइयों और राजनीतिक इरादों को मत देखो, युद्ध के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझो।
सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है कि युद्ध समाज को कैसे बनाता और बिगाड़ता है?
बिल्कुल, मतलब ये कि युद्ध को समझना है तो उन समाजों को समझना होगा जो लड़ते हैं। समाज जंग के लिए खुद को तैयार कैसे करता है?
अच्छा,
सिर्फ हथियार और फौज से नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक रूप से भी। लोगों को लड़ने और मरने के लिए कैसे मनाया जाता है? युद्ध की सामाजिक भूमिका क्या है?
सोचिए कैसे युद्ध राष्ट्रीय पहचान गढ़ता है।
हाँ, या समाज में मर्दों औरतों के रोल बदल देता है, या नई तकनीकें पैदा करवा देता है।
तो युद्ध कोई बाहर से आई आफत नहीं, बल्कि समाज के अंदर से ही उपजता है और फिर समाज को ही बदल देता है।
ये तो सोचने वाली बात है। मतलब युद्ध का एक अंदरूनी सामाजिक रोल भी है।
स्ट्रॉचन हमें इतिहास में भी ले जाते हैं, है ना? वो बताते हैं कि जिसे हम पारंपरिक युद्ध कहते हैं, मतलब देशों के बीच बड़ी संगठित लड़ाइयाँ।
हाँ, वो कहते हैं कि ये इतिहास में देखा जाए तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये करीब 17वीं सदी के बाद यूरोप में राज्यों के ताकतवर होने के साथ उभरा,
जब राज्यों ने अपने देश के अंदर हिंसा करने का अधिकार सिर्फ अपने पास रखा।
जी हाँ, जिसे कहते हैं हिंसा पर एकाधिकार, मोनोपोली ऑन वायलेंस, कायम किया। उन्होंने अपनी स्थायी फौजें बनाई, टैक्स सिस्टम बनाए और अंदरूनी दुश्मनों जैसे सामंती राजाओं वगैरह को दबाया।
तब जाकर युद्ध मुख्य रूप से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के खिलाफ की जाने वाली गतिविधि बना।
बिल्कुल, और क्लॉज़विट्ज़ और अंतर्राष्ट्रीय कानून इसी ढांचे पर टिके हैं। युद्ध की भूमिका तब राज्यों के बीच शक्ति संतुलन से जुड़ गई थी।
एकाधिकार न तो हमेशा से था, न ही हर जगह है।
सही काम। इतिहास में ज्यादातर समय और आज भी दुनिया के कई कोनों में हिंसा ज्यादा बिखरी हुई थी। कबीले, गुट या आजकल के जो गैर सरकारी समूह हैं, वो भी लड़ते थे और लड़ते हैं। राज्य की ये खास भूमिका हमेशा से तय नहीं थी। तो फिर आज के जो संघर्ष हैं, जिन्हें कई लोग नई युद्ध, न्यू वॉर्स कहते हैं, उनका क्या?
हाँ, जिनमें सरकारें नहीं बल्कि आतंकी गुट या विद्रोही लड़ रहे होते हैं, धर्म या पहचान के नाम पर लड़ाई होती है और आम नागरिकों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। स्ट्रॉचन इस पर क्या कहते हैं?
वो मैरी कार्लडोर जैसे विचारकों की इस थ्योरी पर बात तो करते हैं, लेकिन
क्या वो मानते हैं कि ये युद्ध वाकई नए हैं?
यही तो पेंच है। स्ट्रॉचन सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि इनमें से कई बातें, जैसे निजी गुटों की हिंसा, पहचान की लड़ाई, आम लोगों पर हमले, ये सब तो उस जमाने में आम थी जब राज्य इतने ताकतवर नहीं थे।
ओह, तो अब ये होना कि शायद ये नए युद्ध कोई बिल्कुल नई चीज नहीं, बल्कि ये राज्य के कमजोर पड़ने और हिंसा के पुराने, ज्यादा बिखरे हुए रूपों की वापसी है।
हाँ, शायद। दिक्कत ये नहीं कि युद्ध बदल गया है, बल्कि ये कि राज्य का उस पर कंट्रोल कुछ हद तक कम हो गया है।
और इसमें अब आर्थिक युद्ध और सूचना युद्ध भी जुड़ गए हैं।
बिल्कुल, और ये अब पारंपरिक फौजी लड़ाई जितने ही या शायद उससे भी ज्यादा अहम हो गए हैं। युद्ध का मैदान और उसकी भूमिका दोनों फैल गए हैं।
और फिर स्ट्रॉचन क्लॉज़विट्ज़ की बात पर लौटते हैं, लेकिन एक नए एंगल से। वो कहते हैं कि आज के संघर्षों में राजनीति पहले से भी ज्यादा हावी है।
हाँ, और शायद ज्यादा उलझी हुई भी। फौजी मकसद अक्सर धुंधले या बदलते राजनीतिक लक्ष्यों के नीचे दबे होते हैं।
इससे सेना के लिए योजना बनाना और काम करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा।
बिल्कुल, सेना का लक्ष्य क्या है यही साफ नहीं होता कई बार। इराक युद्ध 2003-2011 का उदाहरण वो देते हैं।
हाँ, कैसे सद्दाम हुसैन को हटाने में फौजी कामयाबी तो मिली,
लेकिन एक स्थिर लोकतांत्रिक इराक बनाने का राजनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। ये दिखाता है कि जब आप जटिल राजनीतिक हालात में पुरानी फौजी सोच लगाते हैं तो वो कैसे नाकाम हो सकती है? स्ट्रॉचन चेतावनी देते हैं कि शीत युद्ध के बाद की सबसे बड़ी रणनीतिक गलतियों में से एक ये मानना रहा है कि सिर्फ फौजी ताकत से आप जटिल समाजों में टिकाऊ राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं। सैन्य भूमिका की सीमा को समझना जरूरी है।
तो अगर हम स्ट्रॉचन के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं, कौन से बड़े सबक हैं?
देखिए, पहली बात तो ये कि युद्ध और शांति को दो अलग अलग खानों में बांटना अब शायद बेमानी है। संघर्ष तो एक लगातार चलने वाली चीज है, कम या ज्यादा, एक स्पेक्ट्रम जैसा है।
दूसरी अहम बात, आज के युद्ध में राजनीति का रोल केंद्रीय है। फौजी लक्ष्य लगभग हमेशा राजनीतिक इरादों के मातहत होते हैं।
हाँ, ये फौजियों के लिए नई चुनौतियां हैं, उन्हें सिर्फ लड़ना नहीं राजनीतिक लक्ष्यों को भी साधना है।
तीसरा, हिंसा का लोकतंत्रीकरण है ना, मतलब टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ने छोटे गुटों यहाँ तक कि अकेले लोगों को भी ऐसी ताकत दे दी है जो पहले सिर्फ बड़े देशों के पास थी।
ड्रोन, साइबर हमले, सोशल मीडिया, इनसे संघर्ष का रूप और भूमिका दोनों बदल गए हैं।
चौथा, आर्थिक और सूचना युद्ध अब लड़ाई के केंद्र में है।
बिल्कुल, बैन लगाना, ट्रेड वॉर, साइबर अटैक, फेसबुक व्हाट्सएप पर झूठी खबरें फैलाना, ये अब सिर्फ साइड शो नहीं बल्कि अक्सर लड़ाई के मुख्य हथियार हैं।
युद्ध का लक्ष्य अब सिर्फ जमीन जीतना नहीं बल्कि इकोनॉमी को तबाह करना और लोगों की सोच बदलना भी है।
हाँ, और पांचवी बात, इन सब बदलावों के बाद भी इंसान का स्वभाव, डर, इज्जत की चाह, लालच, नफरत, ये आज भी युद्ध को समझने के लिए जरूरी है। टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं बदल सकती,
और इन सब उलझनों की वजह से स्थायी शांति पाना शायद पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। शांति का लक्ष्य और भी दूर लगता है।
स्ट्रॉचन के कुछ विचार सच में दिमाग की बत्ती जला देते हैं। जैसे वो कहते हैं, युद्ध अब वो चीज नहीं रहा जिसे राज्य घोषित करते हैं और फिर अपने सारे साधन लगाकर तब तक लड़ते हैं जब तक कोई एक जीत ना जाए, बल्कि ये कई किरदारों के बीच ताकत और असर के अलग अलग औजारों का इस्तेमाल करके मुकाबला करने और सहयोग करने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन गया है।
अरे वाह, ये तो युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। वो एक साफ शुरुआत और अंत वाली बात खत्म। एक और विचार जो सोचने पर मजबूर करता है, शीत युद्ध के बाद की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल ये मान लेना रही है कि केवल सैन्य बल जटिल समाजों में स्थायी राजनीतिक परिवर्तन ला सकता है।
ये तो सीधी चोट है हाल के कई फौजी हस्तक्षेपों पर, है ना?
बिल्कुल, और ये भी कितना सटीक है, 21वीं सदी में सबसे निर्णायक लड़ाइयां अक्सर पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, सूचना और सामाजिक धारणा के क्षेत्रों में लड़ी जाती हैं।
ये बात तो आज हम रोज महसूस करते हैं, साइबर वॉर, इकोनॉमिक सैंक्शंस और प्रोपेगेंडा के इस दौर में।
हाँ, और शांति को वो कैसे देखते हैं ये भी दिलचस्प है। शांति संघर्ष की गैर मौजूदगी नहीं है बल्कि अहिंसक तरीकों से प्रतिस्पर्धा और असहमति का सफल प्रबंधन है।
मतलब शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला मैनेजमेंट है। संघर्ष खत्म नहीं होगा, उसे संभालने का तरीका बदलना होगा।
ये सारे विचार युद्ध और शांति की भूमिका और लक्ष्य पर हमारी पुरानी समझ को वाकई हिला देते हैं। तो सवाल उठता है कि इन सब गहरी बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या हमारे देश के लिए क्या मतलब है?
देखिए, नीति बनाने वालों के लिए तो साफ है कि उन्हें युद्ध और शांति को अलग अलग देखना बंद करना होगा। उन्हें इकोनॉमी, सूचना, फौज और डिप्लोमेसी, सबको मिलाकर रणनीति बनानी होगी।
और ये समझना होगा कि संघर्ष के लक्ष्य अब सिर्फ फौजी नहीं रहे।
बिल्कुल, और फौज के लोगों के लिए उनकी ट्रेनिंग बदलनी होगी। उन्हें ऐसे युद्धों के लिए तैयार होना होगा जहां राजनीतिक पैच हमेशा हावी रहेंगे।
और कामयाबी सिर्फ दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की उलझने समझने में होगी। उनका रोल बदल रहा है।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसका असर बिजनेस और इकोनॉमी पर भी है। कंपनियों और सरकारों को सोचना होगा कि उनके आर्थिक फैसले सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं।
जैसे हम किस देश से सामान मंगा रहे हैं, किस पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं, ये अब सिर्फ व्यापार के नहीं सुरक्षा के भी सवाल बन गए हैं।
सही कहा।
आर्थिक लक्ष्यों को सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
और हम जैसे आम लोगों के लिए
इस सूचना युद्ध के जमाने में सबसे जरूरी है मीडिया साक्षरता और क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब ये समझना कि जो खबर हम पढ़ या देख रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, उसका मकसद क्या हो सकता है।
हाँ।
क्या कोई हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है या कोई खास नैरेटिव बना रहा है।
बिल्कुल, ये समझना अब एक तरह की नागरिक जिम्मेदारी बन गई है कि कौन किस लक्ष्य से सूचना फैला रहा है। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है तो ये और भी जरूरी हो गया है।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा का सार ये है कि युद्ध को समझने के लिए कितना खुला दिमाग रखना होगा। ये सिर्फ नक्शों और फौजों का खेल नहीं।
हाँ, ये समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सूचना सबसे गहराई से जुड़ा है।
और स्ट्रॉचिन का इतिहास का हवाला हमें याद दिलाता है कि जिसे हम नया कह रहे हैं वो शायद पुराने पैटर्न का ही नया रूप हो। युद्ध की भूमिका लगातार बदल रही है, ये साफ है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि क्लॉजविट्स जैसे बड़े विचारक को भी कई बार कितना सपाट समझ लिया जाता है। युद्ध को सिर्फ पॉलिसी का औजार मान लेना कितना खतरनाक हो सकता है
अगर हम उसकी अपनी बेलगाम, कई बार बेतुकी फितरत को नजरअंदाज कर दें।
बिल्कुल, स्ट्रॉचिन हमें याद दिलाते हैं कि बौद्धिक विनम्रता और गहरी ऐतिहासिक समझ कितनी जरूरी है, खासकर जब हम युद्ध जैसे विनाशकारी विषय की बात कर रहे हों।
युद्ध का अध्ययन करने का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं बल्कि उसे गहराई से समझना होना चाहिए।
और शायद यही समझ हमें शांति के ज्यादा करीब ले जा सकती है, उस शांति के जो संघर्ष का अंत नहीं बल्कि उसका बेहतर प्रबंधन है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।